मिसिस तैमूरी को ऐसा क्या कह दिया आपने? पूरे एक घंटे तक टेलीफोन पर अपना दर्द दिल सुनाती रही। किस तरह रो रही थी वो?
खुद उन्हीं की गलती है, 25 स्टूडेंट्स को हर रोज खुदा पर छोड़कर चली जाती हैं। आखिर ये बच्चे अब क्लास 3 में आ चुके हैं, अगर मैथ्स में कमजोर रह गए तो मैट्रिक तक यूं ही लंगड़ाते रहेंगे। किसी दिन मोहतरमा के शोहर सफर से आ जाते हैं तो उनकी वजह से छुट्टी लेकर चली जाती है, तो किसी दिन उनकी माँ दूसरे शहर से आ जाती है फिर छुट्टी ले लेती है।
बेचारी मुश्किल में है। आप तो ऐसी नहीं थी, अगर थक गई हैं तो मैं आपकी जगह चली जाती हूँ।
मसला क्लास में जाने का नहीं है आजम जान, उनको मालूम होना चाहिए कि बच्चों का मुस्तकबिल उनसे वाबस्ता है, लिहाजा छुट्टियाँ लेने से उनको परहेज करना चाहिए।
लेकिन तमाम स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स उन्हें पसंद करते हैं।
फजूल में पसंद करते हैं, ये मोहतरमा न स्कूल आती है और न ढंग से पढ़ाती है, लेकिन फाइनल एग्जाम्स में 70-80-100 दे देती है। पेरेंट्स को तो नहीं मालूम ना कि मामला क्या है, लेकिन मुझे मालूम है।
अरे भाई, टीचर ज्यादा होमवर्क देती है तो आप कहती हैं क्या ये जेल है जहाँ बच्चे जबरी मशक्कत झेल रहे हैं, और जब कोई टीचर कम होमवर्क देती है तो आप कहती हैं सही से नहीं पढ़ाती।
ना अफरात न तफरीत होनी चाहिए, जैसी ये अपनी क्लास 5th की मिस खुरमी फाइनल एग्जाम्स को जवाब बनाकर स्टूडेंट्स को इतना होमवर्क और एक्सरसाइज देती हैं कि बच्चों का पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता, ना कि मिस तैमूरी की तरह जो हर वक्त मोबाइल पे बातें करती रहती हैं। इतना ज्यादा काम जो दूसरों के लिए अजाब बन जाए, और इतना ज्यादा काम लेना भी दूसरों के लिए मुनासिब नहीं होता।
तो फिर क्या करें?
न्याना रवि इख्तियार करें, एतदाल से काम लेना चाहिए। मैंने कभी किसी और पे एतराज किया तो फिर इसलिए कि वो अपने फराइज पूरे कर रही हैं। बुजुर्गों का कहना है किसी भी काम में ना अफरात ना तफरीत होनी चाहिए। देखो आजम जान, अगर मैं ये सब कुछ देखूं और खामोश तमाशाई बनी रहूं तो कल मुझे जवाब देना पड़ेगा।
और सुनाएं, मामला आगे बढ़ा?
नहीं,
बहरहाल अब तो सब कुछ खत्म हो गया, फिर खुद को क्यों परेशान करती हो?
परवाना के चचा के घर जाना चाह रही थी, लेकिन जानती हूँ कोई फायदा नहीं होगा। फिलहाल तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, डरती हूँ दोबारा नाकाम ना हो जाऊं।
तो आपका क्या जाएगा? अगर वो ये कह भी देते हैं कि वो किसी परवाना को जानते ही नहीं तो क्या हुआ, फिर से तलाश शुरू कर दीजिएगा।
क्यों, कुछ नहीं चला जाएगा, कम अज कम एक उम्मीद तो है ना। अभी
अगर आधे घंटे में हम लोग वापस ना आए तो फिर
पता है यार कि फिर पुलिस को फोन कर दूं।
चलो इनकी चलो। मसूद खान तुम भी ना यार, तुम तो समझदार थे प्यारे।
अरे भाई, इस तरह तो पुलिस हमें धर लेगी, अक्कल से पैदल।
अच्छा बाबा, अच्छा तो बताओ फिर क्या करूं?
कुछ नहीं, बस खुद आ जाना मामले को संभालने के लिए। इस तरह जाहिर करना जैसे तुम खुद ही पुलिस अफसर हो, माशाल्लाह तुम्हारे चेहरे देखकर कोई भी धोखा खा सकता है, समझे?
समझ गया,
चलें फिर चलते हैं।
इस बुर्ज की तामीर में मेयारी मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, मेरा नहीं ख्याल कि आपको इसमें कोई नुक्स नजर आएगा। इसकी तमाम चीजें मेयारी हैं, ये इमारत जदीद सहूलियात से आरास्ता है। अरे ये क्या कर रहा है यार?
नहीं जनाब, मटेरियल मेयारी नहीं है।
हम इस्तेमाल हुए मटेरियल की मजबूती का अंदाजा लगा रहे हैं,
नहीं फरमर साहब, पायदार नहीं है।
क्या मतलब पायदार नहीं?
कहने का मतलब ये है कि जलजले का हल्का सा भी झटका आया तो पूरी बिल्डिंग बैठ जाएगी। समझ आया कुछ?
लगता है कि आप लोगों की तबीयत कुछ ठीक नहीं है।
इत्तफाक से अच्छी है।
मिस्टर, हमारी तबीयत तो ठीक है लेकिन आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती। मैं कह रहा हूँ कि जावेद साहब से मिलना है, तुम हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हो। जाओ जाकर बुलाओ अपने बॉस को, बुलाओ जाओ।
सुने, इस बुर्ज का एजेंट मैं हूँ जनाबे आली।
तो सुनिए जनाबे खाली, मैं सिर्फ एक यूनिट का खरीदार नहीं बल्कि पूरा बुर्ज खरीदना चाहता हूँ। कुछ समझ आया? जाओ बुलाओ उन्हें।
पूरे का पूरा बुर्ज खरीदेंगे।
अरे ये तो मेरी बेटी की मंगनी की तस्वीर है, ये आपके पास क्या कर रही है?
ये मेरी बहू है और ये मेरा।
माशाल्लाह, खुदा सलामत रखे।
जी शुक्रिया। ये तस्वीर मिसेस फतीही ने दी है मुझे, क्या आप जानती हैं इन्हें?
जी जी, उनकी बेटी मेरी बेटी की बहुत अच्छी दोस्त है।
मैं कई सालों से अपनी बहू और पोते को तलाश कर रही हूँ।
क्या मतलब?
ये लंबी बात है, कुछ घरेलू वजूहात की बिना पर मिसेस फतीही को तमाम बातों का इल्म है। तय तो ये पाया था कि वो फोन करेंगी। अगर आपके पास कोई फ़ोन नंबर एड्रेस है तो दे दें।
वल्ला मुझे नहीं मालूम, मेरा मतलब है कि।
वैसे आप तहकीक करवा सकती हैं, मैं सईदी हूँ, जहरा स्कूल की प्रिंसिपल, सेक्टर 3।
मेरा मतलब ये नहीं था, मुझे अफसोस है कि मेरे पास आपकी बहू का एड्रेस या कोई फ़ोन नंबर नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरी बेटी आपकी बहू को अच्छी तरह जानती है। मैं उसे पूछूंगी, अगर कोई घर का पता या फ़ोन नंबर उसके पास हुआ उनका तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगी।
ये आपका मुझ पर एहसान होगा, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? ये मेरा कार्ड और फ़ोन नंबर है, अगर मुमकिन हो तो मुझे ज़रूर फ़ोन कीजिएगा।
जी ज़रूर, क्यों नहीं।
बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा आपको सलामत रखे। खुदा
हाफिज़।
तो तुम्हारा कहना है कि तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कुछ सबूत हैं?
जी बिल्कुल, ऐसा ही है।
मुझसे मजाक कर रहे हो?
काबिज, क्या मैं कभी किसी से मजाक करता हूँ?
बिल्कुल भी नहीं जनाब परामर्श। अरे क्या कर रहे हो, गुदगुदियां तो मत करो।
अच्छी बात है, ठीक है, अब जबकि तुम लोग डील के मूड में नहीं हो तो फिर हम चले जाते हैं। लेकिन अब कानून की जबान में बात होगी।
इससे पहले कि तुम लोग कानून की जबान में बात करो, मैं खुद ये काम कर चुका हूँ। कब तक पहुँचेंगे?
मेरा ख्याल है 5 मिनट में पहुँचने वाले हूँ।
टेलीफोनिक टैक्सी मंगाई?
हाँ प्यारे, टेलीफोनिक गाड़ी ही मंगवाई है।
जनाब फरामर्ज, ये तो बड़े मेहमान नवाज है।
हाँ लगता तो ऐसा ही है।
बस गाड़ी मंगवाने के लिए जिस नंबर पर रابطہ किया है वो 15 है। ये गाड़ी आप जैसे लोगों को ही ले जाने के लिए मखसूस है।
तो मैं ऐसा कुछ नहीं करोगे क्योंकि मैं बहुत ही बुरा आदमी हूँ।
मैं तुम जैसे फ्रॉडियों और ब्लैक मेलरों से नहीं डरता हूँ।
अच्छी बात है, हम भी यहाँ ठहरे हैं, हम भी तो देखें तरह यहाँ पर आ कौन रहा है।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम
अस्सलाम।
मुझे इनसे बात करने का हौसला नहीं।
करामती साहब 1 घंटे से आपका इंतजार कर रहे हैं।
चले मैं आपके लिए चलता।
कोई जरूरत नहीं, खुद जा सकता हूँ।
ओहो पूरिया साहब, कहो कैसे हो, ठीक हो, किधर हो भाई, बैठो।
क्या मैं पूछ सकता हूँ मुझे किस लिए बुलवाया गया है?
पहले मैं तारुफ करवाई देता हूँ, ये मिस समाना आलमी और ये जनाब अमीर पूरिया है। आओ बैठो, तो यूं ही जरा मिल बैठ कर बातें करनी थी। बैठ भी जाओ यार।
Thank you.
ये तोहमत और बख्शवाने का क्या ड्रामा रचाया है?
कौन सी तोहमत? मैंने किसी पर कोई तोहमत नहीं लगाई।
क्यों नहीं? तुमने तोहमत लगाई है कि मेरे बाबा एक बेईमान आदमी थे, तुमने हमारा नमक खाया है।
मैंने तोहमत नहीं लगाई, हकीकत बयान की है।
जिस शख्स की जाहिर बातिन और गुफ्तारो किरदार में फर्क हो उसे तोहमत नहीं कहते।
क्यों नहीं, ये तोहमत ही है।
नहीं मोहतरमा, ऐसा नहीं है। मैं तो प्रोफेसर आलमी का गिरवीदा था, अब भी मुझे उनकी वो दिलनशी बातें याद हैं। अब भी जब मैं सोचता हूँ कि मैं उनकी दिलनशी और सहर अंगेज बातों को क्यों इतनी नहमाकी से सुना करता था, तो मुझे खुद पर हंसी आती है। वो बहादुरी और जवां मर्दी, गैरत और हमियत वगैरह के बारे में बातें किया करते थे। वो जब इमाम अली के बारे में बताया करते थे, उन तमाम बातों की बाजगश्त आज भी मेरे कानों में गूंजती है।
उसने अली के चेहरे मुबारक पर थूका, उस अली के चेहरे पर जो हर नबी और वली का फख्र है। उसने थूका उस चेहरे अकदस पर के महताब भी जिसके सामने सजदारेज होता है।
मुझे ऐसे लोगों से जो दम तो अली का भरते हैं लेकिन अमल में पैरवी बातिल की करते हैं सख्त नफरत है।
अली ए साहिब ज़ुल्फ़िकार अदल इंसाफ, ए फ़ुक़रा के शाहो अमीर, वो जो रोजाना रात से सुबह तक खानों का जखीरा अपने दोशे मुबारक पर उठाकर कूफे की गर्द आलूद गलियों में और यतीमों के दरवाजों पर दक्कुल बाप करके रखाते थे।
लेकिन आपके वालिद ने गरीब लड़के के साथ जो खुद चलकर उनके दरवाजे तक आया था, क्या किया?
उसकी हाजत रवाई या दस्तीगीरी की? नहीं, शिम्र की तरह सर ही काट दिया, उसकी तहकीर की, उसकी इज्जत नफ्स मजरूह की।
मेरा ऐसे लोगों से जिनकी जबाने अली के साथ हों और दिल मुनाफिकों के साथ कोई ताल्लुक नहीं।
आपके वालिद भी बातें तो दरवेशाना किया करते थे लेकिन उनका रहन सहन और ठाट बाट ऐसे कि मुझ जैसे सैकड़ों को खरीद लें।
उन्होंने मुझे सिर्फ इसलिए ठुकराया ताकि वो आपका हाथ किसी ऐसे शख्स के हाथ में दे सकें जो उनकी तरक्की में सीढ़ी का काम दे और इस तरह वो कॉलेज के प्रिंसिपल या यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन जाए। भला मैं उन्हें क्या दे सकता था? कुछ नहीं।
बस करें, ऑल फॉल बके जा रहे हैं। मेरे बाबा ने ना तो आपकी तहकीर की थी और ना ही धुतकारा था, बल्कि आप खुद ही बजाय इसके कोई मुनासिब हल निकालते मेरे बाबा की क्लास में जा पहुंचे, वहां जाकर हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने कितना बर्दाश्त किया?
उनकी बर्दाश्त दिखावा थी ताकि लोग समझें वो एक अजीम और दरगुजर करने वाले इंसान हैं। लेकिन आखिर हुआ क्या? उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी से ही निकाल दिया।
बाबा ने नहीं निकलवाया था आपको, आपकी अहमकाना हरकतों की वजह से निकाला गया था। आपको एहसास कमतरी है इसीलिए कामयाब लोगों से चलते हैं, और जो कोई आपको मौका फराहम करता है तब उससे फायदा उठाने लगते हैं। मेरे बाबा ने आपसे कहा कि जाएं जाकर कोई काम करें, जरिए माश तलाश करें, और कुछ गलत भी नहीं कहा, लेकिन आप ना अहल थे, कोई काम ना कर सके। बस चाहते थे कि मुझसे शादी करके एक ही रात में सदियों का सफर तय कर लें। मेरे बाबा ने आपकी गुर्बत का मजाक नहीं उड़ाया था, बल्कि आप खुद अपने एहसास कमतरी में समझ बैठे हर कोई आपका मजाक उड़ा रहा है। हिलकर काम करना नहीं चाहते, बैठे बिठाए सब कुछ पा लेना चाहते हैं। सच पूछे तो मुझे आपके प्रपोजल पर शक था, क्या आखिर मैं ही क्यों?
मैं अभी आपके शक को दूर किए देता हूँ। आप मेरे आइडियल की बेटी थी, उसकी बेटी जिसने मेरा सब कुछ बदल डाला था, मेरी जिंदगी, मेरा दीन, मेरी दुनिया, मेरा ईमान, मेरा सब कुछ जिसने मुझसे ले लिया था। मैं एक देहाती लड़का था, बिल्कुल मौलाना रूम की मसनवी के किरदार की तरह।
आपके बाबा के लेक्चर्स ने, जो बेशतर मौलाना रूम की मसनवी पर मबनी हुआ करते थे, मुझे गुमराह कर दिया। हाँ, मैंने हमेशा हसरत से लोगों की जिंदगी को देखा, लेकिन आपके बाबा उन तमाम दौलतमंदों में सबसे मुनफरिद थे। वो पढ़े लिखे थे, ऐसे अमीर आदमी थे जो बज़ाहिर हम गरीबों की तरह लगते थे। उनकी दिलावेज बातें मेरे दिल में घर कर गई थी।
उनके पास पुराने मॉडल की गाड़ी थी लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उनकी बेटी के पास नए मॉडल की गाड़ी है। आपके बाबा दीगर अमीरों से मुख्तलिफ थे, वो गरीब के दिल की बात करते थे, दीन की, अदल मसावात की बातें किया करते थे, जबकि वो बाकी लोगों से मुख्तलिफ थे। तो मैंने सोचा कि यकीनन उनकी बेटी भी तमाम लड़कियों से मुख्तलिफ होगी।
आपके बाबा ने मुझसे मेरा दीन छीना और आपने मेरा दिल। जब आखिरी बार मैं उनसे मिला तो मैंने मसनवी मानवी के मूसा और चरवाहे वाले अशार पढ़े, क्योंकि वो उन्होंने ही मुझे पढ़ाए थे। मैं तवक्को कर रहा था अगला शेर आपके बाबा मुकम्मल करेंगे, वो अभी आखिरी शेर पढ़ेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्होंने नहीं पढ़ा और मुझे देखते रहे।
اب میں مثنوی کے وہی اشعار آخری بار رخصت ہوتے ہوئے آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ تمہیں فاصلے مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہے، نہ کہ فاصلے بڑھانے کے لیے۔ اب مجھ میں ان غیر متوقع ملاقاتوں کا حوصلہ نہیں ہے۔
مس عالمی، آپ نے آخری شعر کیوں نہیں پڑھا؟
مجھے یاد نہیں۔
تعجب ہے مجھے اپنی اس کمزور یاداشت کے باوجود بھی آج تک یاد ہے۔ شاعر کہتا ہے کسی قسم کے تکلفات میں مت پڑھو، جو تمہارے دل میں ہے وہ سب بلا جھجک کہہ ڈال۔ بس
پوچھنا چاہ رہی تھی کہ نجفیان کا گھر یہی ہے؟
جی جی۔
معافی چاہتی ہوں محترمہ، نجفیان ان کا نام پروانہ ہے، ان کا ایک بیٹا بھی ہے نیما۔
جی جی، لیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہے؟
کچھ نہیں، بس یوں ہی میں ذرا اطمینان کرنا چاہ رہی تھی۔ بہت شکریہ۔
وہ باہر گئی ہوئی ہے، میرا خیال ہے آدھے گھنٹے تک آ جائیں گی۔
جی بہت بہت شکریہ۔
آپ اندر تشریف لے آئیے۔
نہیں شکریہ، میں باہر ہی انتظار کر لیتی ہوں۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔ میں وہ دراصل میں نے فیصلہ کر لیا ہے، یعنی میں نے تمہاری باتوں پر بہت غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ تم صحیح کہہ رہی تھی۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنا سب کچھ بیچ کر بھی دنیا کے آخری کونے تک میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔
ایکسکیوز می، میں ابھی آتی ہوں۔
بہنوش،
चले ना मामा, आप रुक क्यों गई हैं?
मैंने बड़ी मुश्किल से पूरिया को अपने ऑफिस में बुलाया था और आलमी साहब की बेटी से भी बात करवाई हाजी साहब, लेकिन गालिबन मामला काफी गंभीर मालूम होता है।
जाहिर है पूरिया का मायूस हो जाना ऐसा मसला नहीं जो आसानी से हल हो जाए, लेकिन मैं इस किस्म के इकदाम की तायद करूंगा। कम अज कम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने और उनके लिए कुछ न करने से तो कहीं बेहतर है। इसी तरीके से उलझने सुलझेंगे और उसके दिल का गुबार भी हल्का हो जाएगा।
मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, सोचा कि आपसे मशवरा कर लूं।
जी, हमें सोच समझ कर कदम उठाना होगा। प्राइवेटाइजेशन ऑफिस से मुतालिक भी खाकसार ने अर्जुमन काशानी साहब की खिदमत में जरूरी गुजारिशात अर्ज कर दी है। मैंने उनसे मुलाकात की थी और इस मौजू पर तफसीलन बातचीत हुई, तो आपका जिक्र खैर भी हुआ।
मैं बिल्कुल भी आपको जहमत देना नहीं चाहता जनाब, मैं नहीं चाहता कि आप मेरी खातिर।
मैंने खुद कुछ नहीं बताया, उन्होंने पूछा था तो मैंने भी जितना कुछ मैं जानता था, जो सच था वो उन्हें बता दिया। बहरहाल ये फैक्ट्री किसी एक आदमी के सुपुर्द तो करनी ही है ना।
जी, बहरहाल आपका लुत्फ करम है, वाकई नहीं मालूम कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। आप आज रात मस्जिद में है ना?
जी जी, जरूर तशरीफ लाइए, मुझे खुशी होगी। आमाले शबे कदर रात ठीक 9 बजे शुरू हो जाएंगे।
जी जरूर। अच्छा तो फिर रात को मिलते हैं।
इंशाल्लाह
इंशाल्लाह।
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
राजी साहब, करामती साहब आपका इंतजार कर रहे हैं।
सदफ किस लिए गए थे? उन्हें ब्लैकमेल करना चाहते थे? हाँ
नहीं, बस एक यूनिट खरीदने के सिलसिले में गए थे।
वो किस लिए?
एड एजेंसी। असल में मेरा असली काम ग्राफिक का है।
लेकिन तुम्हारी कंप्लेन करने वाले का कहना है तुम लोग बुट सदफ खरीदने की बात कर रहे थे।
हम क्या हमारी शक्लों से ऐसा लगता है?
तुम्हारी शक्लों से तो ये भी पता नहीं लगता कि तुम उसका एक यूनिट भी खरीद सकोगे। बहरहाल बताओ, क्यों ब्लैकमेल करना चाहते हो?
अरे भाई, आप तो फिर वही फरमा रहे हैं कि ब्लैकमेलिंग। आप उनसे खुद क्यों नहीं पूछते कि उन्होंने ऐसा क्या किया है जो हम उन्हें ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं? हाँ,
उन्होंने कोई गैर कानूनी काम अंजाम?
कुछ नहीं, हमने तो बस इतना कहा था कि जनाब आपका ये बुर्ज जल्जला प्रूफ नहीं। ऐसा लगा जैसे हमने उन्हें बाप दादा की गाली दे दी, 4 मुस्टंडों के साथ हम पर चढ़ दौड़े। हाँ, मुझे तो खुद उनसे शिकायत है।
अच्छा, हमारी तहकीक के मुताबिक तुम लोगों का साबका रिकॉर्ड ठीक नहीं है।
हमारा?
जी आपका, धोखाधड़ी, जालसाजी और नकली दस्तावेज बनाने का इल्जाम।
अरे साहब, एक गलती हो गई सो हो गई। किसी जमाने में हम बुरे दोस्तों की सोहबत की वजह से फंस गए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम अपनी मेहनत और खून पसीने की कमाई खाते हैं, जैसे ग्राफिक, एडवर्टाइजमेंट और इसी किस्म के दूसरे दिगर काम।
कोई है जो तुम्हारी इन बातों की तस्दीक करे?
हाँ है ना, मैं बड़ी बड़ी कंपनीज का काम करता रहा हूँ, तकरीबन तमाम कंपनीज के डायरेक्टर्स मुझे अच्छी तरह जानते हैं।
तुम्हारा ये साथी गूंगा है?
नहीं, बस थोड़ा सा शर्मीला है।
ऐ लड़के, तुम क्या करते हो? मुझसे कह रहे हैं? हाँ, तुमसे ही कह रहा हूँ। कोई तीसरा है क्या यहाँ? हम खतात हैं जनाब, फरामर साहब के साथ काम करते हैं। साइन बोर्ड लिखना, बैनर्स लिखना, इसके अलावा दुकानों के शीशे वगैरह पर भी लिखते हैं। मौसम सरमा की सेल, मौसम गर्मा की सेल, ईद की सेल और न जाने क्या क्या। हम मेहनत से रोटी कमाते हैं, ना किसी और तरीके से।
ठीक है ठीक है, बेहतर होगा कि इन मौतबर कंपनीज में से किसी एक से राबता करें ताकि वो यहाँ आकर जमानत कबलस गिरफ्तारी दें। साथ ही वो आए आकर गवाही या कोई तहरीरी सबूत पेश करें कि आप लोग वाकई उनके लिए काम करते रहे हैं।
ठीक है, अभी मैं अपने एक दोस्त से राबता करता हूँ, वो यहाँ आ जाएगा।
वो क्या करता है?
कुछ नहीं, प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर है, हमारा कस्टमर है।
अभी नहीं कर सकते, जब जरूरत होगी तो हम खुद फोन करवा देंगे। रसूली साहब, इन लोगों को ले जाएं।
तुम यकीन करो, बस फौरन यहाँ पहुँचो।
आखिर ये कैसे मुमकिन है? वो लोग तो बैरून मुल्क नहीं चले गए थे, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रही।
बाद में समझना, फिलहाल तो जल्दी से ये एड्रेस लिखो जो मैं बता रही हूँ और फौरन पहुँचो।
अच्छा बाबा, आ रहा हूँ, लेकिन याद रहे सिर्फ आपकी खातिर आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कोई फायदा नहीं। खैर आप बताइए एड्रेस।
खयाबान इनकलाब, फखर राजी। मैं इंतजार कर रही हूँ, खुदा हाफिज।
तुम मुतमईन हो कि अपना जमा जमाया बिजनेस, जिसके लिए तुमने सालों तक उदू की, उसे बेचकर मेरे साथ बैरून मुल्क जाने को तैयार हो?
तो क्या तुम कुछ और चाहती थी?
नहीं, लेकिन।
लेकिन क्या? क्या कोई और बहाना बाकी है?
लेकिन पहले मुझे जाना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास वीजा नहीं है।
नहीं नहीं, अब ऐसे नहीं चलेगा। पहले हम निकाह करेंगे, फिर तुम जाओगी, फिर फौरन मेरे लिए वीजा भिजवाओ।
लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है।
यही वाहिद राह हल है और सब यही करते हैं। मैं ये तो नहीं कर सकता ना कि अपना सब कुछ बेच दूं और तुम वहां जाकर शादी से इनकार कर दो। लिहाजा पहले हम निकाह करेंगे।
तुम पहले अपना सब कुछ बेच दो ताकि मुझे यकीन आ जाए कि तुम मेरे साथ जाना चाहते हो, और मेरे जाने का इजाजत नामा भी मुझे लिख कर दो।
ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है, जैसा मोहतरमा फरमाएंगी बंदा वैसा ही करेगा। और कुछ?
नहीं, मुझे और कुछ नहीं कहना।
तो फिर मंजूर है, लेकिन अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। आज के बाद मैं नहीं चाहता कि तुम सरोज करामती से मिलो। अगर तुम अरवाहों के सिलसिले में कहीं जाना चाहती हो तो बेशक जाओ, लेकिन अब हम दोनों साथ जाएंगे हर जगह। क्या कहती हो, मंजूर है?
मैं सोचकर बताऊंगी।
अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम, माफ कीजिएगा आपको जहमत दी, हमें आपकी पड़ोसी नजफियान साहिबा से मिलना था। मैं अभी आधा घंटे पहले आई।
नजफियान? नहीं, यहाँ तो कोई नजफियान नहीं रहती।
बस हो गई तसल्ली आपकी, मुझे खामखा इतना खार किया।
नहीं, लेकिन अभी तो आपने कहा था कि नीम और परवाना यहीं रहते हैं, बाहर गई हुई है और आधे घंटे में लौट आएंगी।
आपको वहम हो गया है मामा, चले।
ये नहीं हो सकता। देखिए मोहतरमा, आप रोजे से हैं, शब कदर के आयाम हैं, आप सच सच क्यों नहीं बताती?
परवाना साहिबा, अभी मेरा मतलब है अभी घर पर नहीं है।
तो यानी परवाना और नीमा यहीं पे रहते हैं?
ये उनकी तस्वीर है, एक महीने पहले की, मंगनी की रस्म में। यही तेहरान की है।
ये आपको कहां से मिली और कब पता चला?
ये जरा लंबी कहानी है, तुम्हें फिर बताऊं, हमें इनका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहिए।
माफ कीजिएगा मैडम, जरा देखें क्या ये वही हैं?
जी, ये वही दोनों हैं।
शुक्रिया,
मुझे यकीन नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया मैडम, शुक्रिया।
शुक्रिया, खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
आओ चलते।
माफ करना, मैं झूठ नहीं बोल सकी, उन्होंने कसम दे दी थी।
खुदा मुझे बख्श दे, आप भी मुझे माफ कर दे, मैंने झूठ बोलने के लिए मजबूर किया।
अब तुम क्या करोगी? हाँ,
कुछ दिन के लिए मैं कहीं चली जाऊंगी, पता नहीं शायद मैं घर ही बदल दूं।
कम से कम ये तो पूछ लो कि आखिर वो चाहते क्या है।
नहीं, वो चाहते हैं कि मेरा बेटा मुझसे छीन ले, जैसा वो चाहता है वैसा कभी नहीं होने दूंगी।
जैसा तुम मुनासिब समझो, फिलहाल आओ मेरे घर चलो,
बिल्कुल पीली पड़ गई हो, थोड़ी तवज्जो बढ़ जाएगी। नीमा को साथ लौट चलो।
अच्छा तो आपने अपनी स्टूडेंट की खाला के जरिए ढूंढा है इन्हें?
हाँ।
दुनिया कितनी छोटी है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि अमू साले ने हमसे झूठ क्यों बोला, यहाँ तक कि उनकी बेटी परी ने भी उनकी बात की तायीद की। आखिर क्यों लोग इतना झूठ बोलते हैं?
खुदा बख्शे परवाने की माँ को उनके चचा की बेटी ने परवाने का एड्रेस मुझे दिया था। मिस्टर समावती ने स्कूल से उन लोगों से राब्ता भी किया था।
अखबार तक में गुमशुदगी के इश्तेहार छपवाए। अमू साले ने ऐसा क्यों किया?
ये कहाँ जा रहे हो?
अमू साले के घर।
रुको, बिना सोचे कोई कदम नहीं उठाना।
मुझ में अब सोचने समझने का ना हौसला है, ना हिम्मत और ना ही वक्त।
क्या मतलब?
मैं अभी इसी वक्त उनके घर जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आज ये किस्सा तमाम हो जाए और पता तो चले उन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला।
बेड़ा गर्क हो तुम्हारा, बर्बाद हो जाओ तुम।
हेलो
राजी साहब, आपके लिए फोन है।
जी जी, बात करवाएं जल्दी। हेलो फरा मर्ज, तुम हो?
तुम कहाँ हो यार?
दावत में हूँ, हवालात में हूँ।
अब रंग क्यों उड़ गया
यार? ये तुम्हें मेरा उड़ा रंग कहाँ से नजर आ गया?
प्यारे फोन के पीछे से भी चेहरे के बदलते रंग पहचान लेता हूँ मैं। अच्छा सुनो, जल्दी से घर के कागजात लेकर आओ, हमें बाहर निकालो यहाँ से।
कागजात? कागजात कहाँ से लाऊं?
कहाँ रखे हैं?
तहखाने में।
अच्छा हाँ, मेरे घर के तहखाने में। कमरे के काट कबाड़ में होगा, लिफाफों के अंदर। जल्दी करो, कोई ले ना उड़े।
क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा।
अच्छा बच्चू, हमसे चलाकी कर रहा है। देखो प्यारे, अगर वो कागजात लेकर तुम नहीं आए और हमें यहाँ से बाहर ना निकलवाया तो वो करूंगा कि तुम खुद भी इस जेल की सलाखों के पीछे होगे। हर चंद के हम आपको ज्यादा जहमत नहीं देना चाहते जनाब।
मसूद राजी साहब।
हाँ, मेरा नाम मत लो बेवकूफ।
ये क्या ऑल फॉल बक रहे हो?
अच्छी तरह सोच लो, समझ में आ जाएगा।
ठीक है,
गौर से सुन
और कान खोल कर सुन।
अगर 48 घंटे में हमें यहाँ से ना निकलवाया तो मैं वो करूंगा कि तुम्हें भी पूरी उम्र जेल में चक्कियां पीसनी पड़ जाएंगी।
अच्छा ना, दे रहा हूँ तेरा फोन, भाग जाएंगे।
खा नहीं जाऊंगा कोई। चल
नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, बस कामरान जरा।
क्या कामरान? क्या कहीं शफी ने फिर से तुम पर कामरान से शादी करने का दबाव डालना तो नहीं शुरू कर दिया?
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो।
तो फिर कामरान का ये क्या किस्सा है?
कुछ नहीं, बस मुझे पहले कामरान से निकाह करना होगा, फिर आपके पास आना होगा।
ये कैसी बातें कर रही हो मेरी जान? यहाँ उस लड़के के लिए कोई जगह नहीं है। और फिर वैसे भी अभी तो हम तुम्हारे बाप से तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए इजाजत लेने में लगे हुए हैं, और अब तुम हो कि खुद को कामरान का असीर करना चाहती हो। अगर वो निकाह के बाद मुकर गया तो तब तुम क्या करोगी?
नहीं मामा, मैं पहले ही अपने वकील के जरिए कामरान से इजाजतनामा ले लूंगी। कहा तो है, आप परेशान मत हो।
बहरहाल याद रहे, तुम अपने जिद्दी बाप की फैमिली से टकराने की कोशिश मत करना। और मेरी जान, मेरी वकील मिसेस सलामत से जाकर जरूर मिल लेना। अगर वो भी तुम्हारे लिए कुछ ना कर सकी तो मैं खुद तुम्हें लेने के लिए वहाँ आ जाऊंगी।
हाँ हाँ मम्मा, हाँ।
दो सालों से उसे लावारसों की तरह तनहा छोड़ रखा था। ये तुम लोगों के लिए काफी ना था? उसे अपनी जिंदगी चैन से गुजारने दो।
लेकिन आपने तो कहा था वो ईरान से चली गई है।
हाँ कहा था, आप लोगों के लिए वो ईरान में नहीं है बल्कि वो जिंदा ही नहीं है। अब आपके लिए क्या फर्क पड़ता, वो जिए या मरे? उसने शादी कर ली है, अपना घर बसा लिया, तुम क्यों उसका सब कुछ खत्म कर देना चाहते हो?
झूठ बोल रहे हैं ये, पिछली दफा की तरह सफेद झूठ।
बिल्कुल नहीं, वो खुशगवार जिंदगी गुजार रही है। चाहे तो उसके घर जाकर खुद उसी से पूछ ले, आपको उसके घर का भी पता चल गया।
लेकिन वो घर पर मौजूद नहीं है।
हाँ वो फिलहाल नहीं है, लेकिन लौट आएगी, तब तमाम हकीकत आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगी।
अच्छा
अब चलो जाओ यहाँ से, क्योंकि परवाना अब तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहिए।
आखिर तुम्हें क्यों लगता है कि वो तुमसे मिलने के लिए तड़प रही?
लेकिन ये मैं हूँ जो तुम्हें उससे मिलने नहीं दे रहा।
जो तोहमत तुमने उस पर लगाई थी, इतना सा किस तरह उसने अंगारों पर लौट कर गुजारा,
कुछ अंदाजा है तुम्हें?
और अब जबकि उसने शादी कर ली है, अब याद आई है उसकी तुम्हें?
क्या समझते हैं वो, मैं बच्चा हूँ।
इन बातों का कोई फायदा नहीं बेटा, चलो घर चलते हैं, वहीं चल के सोचते हैं।
सब झूठ है, बिल्कुल झूठ।
हमें तहकीक करना होगी। अब परेशान क्यों हो, हमें नीमा और परवाना का पता चल गया है, यही हमारे लिए काफी है। चलो अब घर चलो, चलो गाड़ी में बैठो।
मैं बाहर जा रही हूँ, अगर चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। वो दरअसल मैं सेनेटोरियम जा रही हूँ।
अब क्या करोगे?
पता नहीं, आप बताएं क्या करूं। आप क्या कहती हैं, जाऊं उसके घर?
अभी नहीं, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। वो लोग यकीनन कहीं सफर पे गए होंगे। खैर तुम ये बताओ, तुम्हारे काम का क्या बना? बहनोज के साथ मिलकर बाकी मरीजों के सिलसिले में कुछ पेशरफ्त हुई?
सोचा था कि मरहूम इस्माइल के बच्चों के मामू बहरोज को मिसेस मेहमान से मिलवा लेगा, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है। अब शायद मैं अकेला ही जाऊं, या शायद फोन करूं।
अब मैं तुम्हारा ये उतरा हुआ चेहरा ना देखूं, जब तक हम खुद परवाने से बात ना कर लें, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। खुदा करे हमारी तलाश जल्द खत्म हो जाए। तुम परेशान ना हो, बहरहाल हमें कामयाबी तो हुई है ना?
बस जरा शौक लगा है।
तुम जाओ बेटा, खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।
मैं मिसेस सलीम ज़ादा को हॉस्पिटल उनके बेटे से मिलाने ले जाना चाहती हूँ।
मैं आपको इस बात की इजाज़त हरगिज़ नहीं दे सकती। पिछली बार मैंने ये इजाज़त अपनी जिम्मेदारी पर दी थी, लेकिन इस बार आप इन्हें सेनेटोरियम से काफी दूर ले जाना चाहती हैं।
अगर वो खुद कहें
एतराज तो नहीं है, लेकिन
माफ करना बेटा, मैं अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ, आपको कोई एतराज तो नहीं है?
नहीं, लेकिन आप बात करने लगी।
हाँ, मैं इस बच्ची के साथ जाना चाहती हूँ, ये मेरी बेटी की तरह है। हरचंद की अब तक मेरी कोई बेटी ना थी, लेकिन आज के बाद मैं तन्हा नहीं हूँ।
मैं बहुत खुश हूँ, इनके आने से आपकी तबीयत काफी बेहतर हुई है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।
मिसेस मेहमान, मैं बिल्कुल भी आपको जहमत देना नहीं चाहता। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ तो वो सिर्फ आप और आपके शौहर के मफाद में।
आपको तो सिर्फ अपनी फिक्र है, लोगों से सिर्फ झूठ बोलते हैं।
देखिए, मैं इस वक्त इस्माइल की फैमिली के सरपरस्त जनाब बहरोज के साथ खड़ा हुआ हूँ।
वही जिनसे आपके शौहर और इंजीनियर जावेद ने इनकी मलकियत धोखाधड़ी से हथियारी थी।
जी, इस वक्त वो यहीं खड़े हैं। मुझे क्या पड़ी है आपसे झूठ बोलने की? अभी आप खुद उनसे बात कर लेंगी, या उनकी रजाइयत हासिल कर लें, या उनके पैसे उन्हें वापस कर दें।
मेरे पास ऐसे कोई पैसे नहीं है, और जितने भी पैसे थे वो पैमान ने उस कमबख्त जावेद को दे दिए थे।
जिस तरह मैंने आप पर इतमाद करके तमाम कागजात और दीगर दस्तावेजात आपके हवाले कर दिए थे, उसने भी आप ही की तरह वादा खिलाफी की और वो वापस भी नहीं किए।
مجھے آپ سے امید تھی کہ آپ میرے شوہر کو عذاب سے نجات دلوائیں گے، لیکن آپ نے تو میری مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے،
اور اب خدا رہا وہ تمام ڈاکومنٹس مجھے واپس کر دیں
ورنہ میں آپ کی کمپلین کر دوں گی۔
شکایت کر دیں گی؟ کس بات کی شکایت کر دیں گی؟ یہ کہ میرے شوہر نے جو جعلی نقشے بنائے تھے اور جس کے ذریعے معصوم لوگوں کو دھوکا دیا تھا، وہ نقشے یہ آدمی مجھے واپس نہیں دے رہا ہے۔
لاؤ مجھے دو۔ السلام علیکم، میں مرحوم اسماعیلی کے بچوں کا ماموں بات کر رہا ہوں، وہی جن کے ساتھ آپ کے شوہر پیمان انجینئر نے فراڈ کیا تھا۔
مجھے آپ سے بالکل بھی پیسے نہیں چاہیے۔
نہ آپ میرے خلاف کمپلین کریں گی اور نہ میں آپ کے خلاف۔ میں اس معاملے کو اب خدا پر چھوڑتا ہوں۔
لیکن آپ یہ جان لے کے یہ زمین آپ کو راست نہیں آئے گی۔
کل جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو یہ بچے خود ہی آپ سے
ادھر تو ادھر دو۔
یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟
ہیلو ہیلو مسز پیمان،
یاد رکھو میں جاوید کو یہ پیسے اتنی آسانی سے ہضم نہیں کرنے دوں گا۔ ایک کو تو خدا نے سبق سکھا دیا ہے، دوسرے کو ہمیں سکھانا ہوگا۔
بہنوش بیٹا، جو لوگ کومے کی حالت میں ہوتے ہیں تو کیا انہیں ہماری آواز سنائی دیتی ہے؟
یقیناً وہ آپ کی بات سنیں گے۔
یار یار میرے بچے، مجھے معاف کر دو، مجھے تم سے ناراض نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ماں کو اپنے بچوں کی غلطی پر غصہ نہیں ہونا چاہیے۔ تم نے غلطی کی، مجھے تمہیں اس گھر کو بیچنے کی اجازت دے دینی چاہیے تھی، لیکن مجھے اسے اتنا سخت نہیں لینا چاہیے تھا۔
آپ خود کو ملامت مت کریں، بس انہیں معاف کر دیں، ان کے لیے یہی کافی ہوگا۔
میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ الگ کون ماں ہوگی جو اپنے بچوں کو معاف نہ کرے؟ خدایا ہم دونوں کی خطاؤں کو بخش دے، خدایا میرے بچے کو شفا عطا فرما اور مجھے بھی معاف کر دے۔ خدا بہتر جانتا ہے میں نے اسے دل سے بد دعا نہیں دی تھی، وہ خوب جانتا ہے میں نے دل سے بد دعا نہیں دی۔ فالج گرے اس زبان پر کہ جس سے میں نے کہا تھا کہ تجھے موت آ جائے۔ خدا آیا میرے خدا، اس شب قدر کے صدقے میں تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ، میرے بچے کو شفا عطا کر دے، میرے بچے کو شفا عطا کر دے۔
سبحانك یا لا الہ الغوث الغوث، خلصنا من النار یا من فدا فی کل شیء امرو، یا من لهب بكل شيء علمه، یا من بلغت لا كل شيء قدرته، یا من لا تحصي العباده نعمه، یا من لا تبلغ الخلائق شكره، یا من لا تدرك الافهام جلاله، یا من لا تنال الاوهام کنه، یا يا من العظمة والكبرياء رضا يا من لا ترد العباد قضاء يا من لا ملك إلا ملك يا من لا أتاء إلا أتاء سبحانك يا لا إله الغوث الغوث خلصنا من النار يا
اللهم إني أسألك باسمك يا
دیگه حتی